नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कल विभिन्न देशों के दौरे पर रवाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बनाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा 26 से 28 मई तक राज्य के सभी प्रखंडों में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। और प्रदेश के विभिन्न भागों में प्री मानसून परिस्थितियों के कारण आंधी बारिश और वज्रपात। सुपौल में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कल विभिन्न देशों के दौरे पर रवाना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के चुने गए सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल भारत की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जिनमें 59 सांसद शामिल हैं, कल से लेकर अगले महीने की 5 तारीख के बीच कई देशों का दौरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू नेता संजय झा, डीएमके नेता कनिमुई करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। प्रतिनिधि मंडल कुल 32 देशों का दौरा करेगा जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल हैं। 10 दिवसीय दौरे के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद से निपटने के लिए देश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता से वैश्विक नेताओं को अवगत कराएगा। साथ ही वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र सिंह के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा बहुदलीय शिष्टमंडल में शामिल नामों पर विवाद को गैर जरूरी बताया है। श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विवाद नहीं करना चाहिए, इससे भारत की छवि खराब होती है।
और जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप इस तरीके से विवाद खड़ा कीजिएगा तो भारत की किस तरीके की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देना। और इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनके चहेते गुट का जो इनके सामने गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि सही में काबिल है, काबिलियत रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातों को रखने के लिए सामर्थ्य है, उन लोगों का नाम दिया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात सेना के जवान भागलपुर के नौगछिया निवासी संतोष यादव शहीद हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई। हादसे में संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सेना में हवलदार पद पर तैनात शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान लाए जाने की तैयारी की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पंजाब सीमा समेत सभी 3 संयुक्त सैन्य चौकियों अटारी, हुसैनीवाला और सादकी पर रिट्रीट समारोह फिर शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए इसे निरस्त कर दिया गया था। आज समारोह में मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल से आम लोग भी समारोह में शामिल हो सकेंगे। एक रिपोर्ट।
रिट्रीट समारोह को स्थगित करने का निर्णय भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के 1 दिन बाद लिया गया था। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच के गेट भारतीय सीमा में बंद रहेंगे। सूर्यास्त के समय झंडा उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजर्स के उनके समकक्ष के बीच पहले की तरह औपचारिक हाथ भी नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही सीमा पर लगी कंटीली तार के पार खेत वाले किसानों को अपनी जमीन जोतने की अनुमति भी दे दी गई है। इस संबंध में बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे किसानों के साथ बैठकें की हैं जो अपनी जमीन पर खेती करना चाहते हैं, और कड़ी निगरानी और सीमित समय के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सुबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास दर को 5% के स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है।
आज उसी टीम के रूप में हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कई चीजों पर। अगर विकसित भारत के लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है 2047 तक कृषि के क्षेत्र में, तो हम मानते हैं कि 5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमको लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और जो विचार मंथन अभी हो रहा है उसमें से ये निकल के आया कि ये संभव है, ये किया जा सकता है और निश्चित तौर पर हम ये करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बना दिया है। अनुभव की अवधि की गणना उम्मीदवार के अधिवक्ता के रूप में प्रोविजनल रूप से पंजीकृत होने की तारीख से की जा सकती है। अनुभव की यह अनिवार्यता योग्यता आज की तिथि से पहले उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी, ये केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 26 से 28 मई तक राज्य के सभी प्रखंडों में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री पांडे ने पटना के बापू टावर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
एक विशेष 3 दिन का अभियान 26, 27, 28 मई को चलाया जा रहा है। ये आगे आने वाला जो 26, 27, 28 मई है, गांव पंचायत स्तर तक पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ेंगे और उनको कार्ड मिलेगा।
गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा है कि राज्य में गुड़ इकाई लगाने की लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। श्री पासवान पटना में ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बंद चीनी मिलों को चालू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य के अधिकतर भागों में प्री मानसून परिस्थितियों के कारण आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की घटना भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद, गया समेत राज्य के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिनांक 21 मई 2025 को राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन बटा वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
इधर सुपौल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज वज्रपात की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। जिले के करजाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बौराहा में एक अधेड़ व्यक्ति जबकि त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर मलहनमा में एक युवक की मौत हो गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। बेगूसराय में स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी रणवीर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से रणवीर महतो घायल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की महिला उप निरीक्षक गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी हैं। सीआईएसएफ ने कहा है कि गीता समोटा की उपलब्धि सीआईएसएफ के साथ ही पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सुरक्षा बल ने कहा है कि गीता ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट को ही फतह नहीं किया है बल्कि उस सोच पर भी जीत पाई है जिसमें यह माना जाता रहा है कि पर्वतारोहण जैसा क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित श्यामल सिन्हा अंडर 16 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में नालंदा ने गया को 6 विकेट से पराजित कर दिया। बिहार शरीफ में खेले गए मुकाबले में गया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 167 रन बनाए। नालंदा ने 41.5 ओवर में 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। नालंदा की ओर से अगस्त प्रमोद कुमार ने 128 गेंदों में 11 चौके की मदद से नाबाद 74 रन बनाए। बिहार अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर विश्वजीत रामानंद को शव वाहन के चालक जयराम सिंह से 4,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिया चौक के पास एक बस और पिकअप वाहन के बीच भीषण टक्कर में बस पर सवार 8 लोग घायल हो गए। कैमूर जिले के भभुआ में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी मनोज बैठा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे ने बाद में भभुआ थाने में सरेंडर कर दिया। इधर मृतक के परिजनों ने हत्याकांड के खिलाफ अस्पताल परिसर में हंगामा किया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में जंगल से भटककर एक भालू नौरंगिया के केरई गांव में पहुंच गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों ने भालू का सुरक्षित रेस्क्यू किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कल विभिन्न देशों के दौरे पर रवाना होगा। उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बनाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा 26 से 28 मई तक राज्य के सभी प्रखंडों में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। और प्रदेश के विभिन्न भागों में प्री मानसून परिस्थितियों के कारण आंधी बारिश और वज्रपात, सुपौल में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।